हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। करण कन्फ्यूजन से उसकी ओर देख रहा था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे इस बारे में बताने वाली नहीं थी, लेकिन बस मैं ये नहीं चाहती थी कि उसे इस तरह से पता चले। मुझे पता था उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। करण ने लापरवाही से ताना मारा। अच्छा, मुझे लगा कि ऑफिस में सबसे सीक्रेट रख रही हो, तो शायद घर पर अपने भाई से भी सीक्रेट रखोगी, क्योंकि वो हमारी एंगेजमेंट में भी नहीं था। शिविका ने करण की बात पर नज़र उठाकर उसकी ओर घूर कर देखा। उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए करण बोला, अरे मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे एक मिनट, ये बताओ तुम्हारा भाई इतना अजीब क्यों है? तुम्हें पता है मैं उससे पहले भी कई बार मिल चुका हूँ। इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों करता है वो? वो मुझसे कुछ क्यों नहीं कहता? और तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम नहीं, उसने उसे बिगाड़ा हुआ है। ये सब बोलते हुए करण आकर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिविका ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा तो पापा ने तुम्हारे साथ मिलकर भी मेरी बुराई कर ली है, लेकिन ये बताओ पहले कब मिले तुम ऋषभ से? करण ने सीरियस होते हुए कहा, कोई बुराई नहीं की, अंकल ने मुझसे तुम्हारी बस सच बता रहे थे, जो कि अभी मैंने भी देख लिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए? शिविका ने निराशा के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? करण ने अपनी बात समझाते हुए आगे सवाल किया, अरे नहीं की होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी देखो अभी वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। और वो यहाँ तुम्हारे साथ ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन करता? कुछ और कर रहा है क्या? शिविका ने टेंशन में कहा, करण तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही नोजी हो रहे हो मेरे फैमिली मैटर्स में? और वैसे भी जो कुछ भी है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो? शिविका की बात सुनकर करण को बहुत बुरा लगा। वो उसकी ओर अविश्वास से देखने लगा। उसे पहले तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ कि शिविका ने उसे ये बोला, फिर उसे यकीन हो गया कि उसने बिल्कुल सही सुना है। ये बात समझ आते ही उसने मन ही मन खुद को डांटा कि शायद वो ज्यादा उम्मीदें लगा रहा है, जबकि उनका रिश्ता तो सिर्फ नाम का है। सगाई तो भले ही हो गई है, लेकिन वो शादी में नहीं बदलने वाला। करण कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। हाँ राइट, तुम्हारा फैमिली मैटर है, मेरा इसमें सच में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो सॉरी, रियली सॉरी एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दिस, मैं ही भूल जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर शिविका को लगा कि शायद उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने एक तरह से सही बात ही बोली है। सच में ऋषभ या फिर उससे जुड़ा कोई भी मैटर शिविका और उसका फैमिली मैटर है, और करण को शायद उनके बारे में इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, इसीलिए शिविका ने उसे ये बात बोली। लेकिन पता नहीं क्यों करण को बुरा लग गया। करण उठकर केबिन से बाहर जाने लगा। फिलहाल उसे नहीं लगा कि उन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ और है। शिविका उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकना चाहती थी, लेकिन फिर उसने ऐसा नहीं किया। उसके जाने के बाद शिविका ने गहरी सांस ली और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, पता नहीं अब इसे क्या हो गया, और ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने, सच ही तो कहा। अगला दिन, करण का घर। 10 बजे बज चुके थे, लेकिन करण अब तक अपने कमरे में ही बैठा हुआ था। वो पूरा तैयार था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका आज ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा था। तब तक समर भी पूरा तैयार होकर वहां आया। वो अपने कॉलेज के लिए निकलने वाला था और साइड में खड़ा होकर अपनी घड़ी पहन रहा था। तभी उसकी नज़र करण पर पड़ी, जो कहीं खोला हुआ सा लग रहा था। उसने अब तक अपने सामने खड़े समर को नोटिस नहीं किया था और ना ही कुछ बोला था। समर ने उसका ध्यान अपनी ओर करते हुए पूछा, भाई ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? करण ने जवाब दिया, हाँ पता नहीं क्यों आज मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन जाने के लिए तो तैयार हूँ, क्योंकि बेवजह छुट्टी नहीं ले सकता मैं, और पहले से इन्फॉर्म भी नहीं किया मैंने ऑफिस में। करण को इस तरह देखकर समर उसके पास आया और उसका माथा छूकर देखते हुए बोला, तबीयत ठीक है ना भाई आपकी? और कोई बात नहीं है, एक दिन की छुट्टी तो ले सकते हो अगर मन नहीं हो रहा। एक काम करो, अभी ऑफिस कॉल करके बता दो कि आप नहीं आ पाओगे। करण ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है कि छुट्टी लेनी पड़े, और फिर यहाँ पर करूँगा ही क्या सारा दिन घर में, तो वही रोज रोज के झगड़े और किचकिच सुनने से तो बेहतर है ऑफिस ही चला जाऊँ। इतना बोलकर करण अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसने समर की ओर देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया। समर बोला, वैसे भाई आपकी सगाई के बाद से तो झगड़े काफी कम हो गए हैं। समर की बात सुनकर करण ने गहरी सांस ली और हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद करण ने उससे पूछा, तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? कॉलेज और कोचिंग क्लासेस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और कुछ भी हो समर तो तुम मुझसे बता देना। समर थोड़ा सोचते हुए बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। हाँ, वो कल मैं मीरा से मिला। करण ने लापरवाही से पूछा, अच्छा कहाँ पर? समर ने जवाब दिया, हाँ वो मुझे तो पता ही नहीं था कि मीरा वहाँ पर काम करती है, और कल मैं अपनी ही एक फ्रेंड के साथ वहाँ पर गया था, तब मैंने देखा उस मोबाइल शोरूम में। करण ने लापरवाही से कहा, हाँ मुझे तो पता है इस बारे में, और वो उसका शोरूम पता है मेरे ऑफिस के पास ही है। हम तो एक दो बार मिल भी चुके हैं जब दोनों का काम साथ खत्म होता है। बस ज्यादातर उसकी मुझसे लेट तक होती है, इसलिए सिर्फ दो बार ही मिले हैं। लेकिन तुम वहाँ शोरूम क्या लेने गए थे? मोबाइल ठीक तो है ना तुम्हारा? एक के बाद एक करण के इतने सारे सवाल सुनकर समर थोड़ी सी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि उसे ऋषभ के बारे में बताए या फिर नहीं। करण अभी भी जवाब के इंतजार में उसकी ओर देख रहा था। उसे अपनी ओर देखता हुआ पाकर समर जल्दी से बोला, अरे हाँ मैंने कुछ भी नहीं लिया, वो मैंने बताया ना फ्रेंड के साथ गया था भाई, उसे ही नया फोन लेना था तो उसने बोला कि चलो साथ चलते हैं, तो बस मैं ऐसे ही उसके साथ चला गया था उसे कंपनी देने के लिए। करण ने पूछा, अच्छा कौन सा फ्रेंड, रोहित या फिर तन्मय? मैं तो तेरे इन दोनों दोस्त को ही जानता हूँ। ऋषभ के बारे में सोचते हुए पता नहीं क्यों समर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन फिर भी अभी ऋषभ के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, इसलिए बात को टालते हुए बोला, अरे भाई आप कौन सा मेरे सारे फ्रेंड्स को जानते हो? और वैसे भी सिर्फ ये दो फ्रेंड ही तो नहीं है मेरे, नए भी बनते रहते हैं, तो बस ऐसे ही। करण ने समझाते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम मीरा मीरा क्यों कहते हो? वो तुमसे दो साल बड़ी है तो तुम उसे दीदी कहा करो। समर ने फिर से उसी तरह कहा, अरे तो क्या हुआ, दो साल बड़ी है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसे भी अपने फ्रेंड मानता हूँ, और मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ भाई, आपको ऑफिस जाना हो तो चले जाना, नहीं तो अब तक तो शायद काफी लेट हो गया है। देखो, दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए समर ने करण को टाइम का ध्यान दिलाया और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद करण ने भी टाइम पर ध्यान दिया तो 11 बजने वाले थे। उसे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता था और अपने आलसीपन में वो लेट हो गया था, लेकिन वो बेवजह की छुट्टी नहीं करना चाहता था, इसलिए उठा और दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। उसने देखा कि ऑफिस का ही नंबर है तो उसने कॉल रिसीव कर ली।
जतिन का कॉल था। उसने करण से लेट होने के लिए पूछा। करण ने उससे कहा कि वो रास्ते में है और बस आ रहा है। तब जतिन ने उसे बताया कि शिविका उसे 2-3 बार पूछ चुकी है और वो अब तक नहीं आया है, इसलिए जल्दी आए। करण ने कॉल डिस्कनेक्ट की और अपनी बाइक निकालकर सीधा ऑफिस की ओर बढ़ गया। वो तेज स्पीड में बाइक चलाते हुए आधे घंटे से भी कम समय में ऑफिस पहुंच गया। उसने पार्किंग एरिया में अपनी बाइक पार्क की और लिफ्ट से सीधा ऑफिस वाले फ्लोर पर आ गया। जतिन ने करण को वहां पर देखते ही कहा, टाइम देख रहे हो, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और तुम हो कि अब आ रहे हो। जतिन को सफाई देते हुए करण बोला, आई एम वेरी सॉरी सर, बट आज शायद पहली या दूसरी बार ही लेट हुआ हूं मैं। जतिन ने बहुत ही हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे मत बताओ ये सद, जाओ और जाकर बॉस को ही सफाई देना, तुम्हें पता है वो कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही है किसी जरूरी काम के लिए। करण धीमी आवाज में खुद से बोला, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया आज अचानक से? जतिन को उसकी बात आधी अधूरी सुनाई दी तो उसने पूछा, क्या कहा तुमने? करण ने आराम से जवाब दिया, नथिंग सर, मैं जाकर मैम से ही बात करता हूँ। इतना बोलकर करण शिविका के केबिन की ओर बढ़ गया और उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, शिविका ने उसकी ओर देखा और बोली, कहाँ थे तुम इतनी देर से? तुम्हें पता है तुमने आज का शेड्यूल भी कम्प्लीट नहीं किया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बिना। इतने दिन में तुम सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो कि मैं तो जैसे एकदम डिपेंडेंट हो गई हूँ तुम पर। शिविका ने उसे देखते ही ये सब कुछ बोला। करण आराम से अंदर आया और उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो फिर शिविका भी सामान्य होकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। करण ने उसके सामने रखा आईपैड उठाया और उसमें एक फाइल ओपन करते हुए शिविका के सामने रख दिया। शिविका ने देखा कि करण ने पहले से ही उसका कंप्लीट शेड्यूल बना कर रखा हुआ है, बस शिविका वो फोल्डर नहीं ढूंढ पा रही थी। वह देखकर शिविका को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और अपना शेड्यूल चेक करने लगी। करण भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप बिना किसी भाव के एकदम प्रोफेशनल फेस बनाकर वहां खड़ा रहा। तभी शिविका का मोबाइल फोन रिंग हुआ। शिविका आईपैड की स्क्रीन पर देखने में बिजी थी, इसलिए साइड में रखा हुआ मोबाइल फोन उसने सीधा रिसीव करके अपने कान से लगा लिया और कॉलर आईडी नहीं देखी। लेकिन दूसरी तरफ से जो भी था फोन पर उससे बात करते हुए शिविका के चेहरे पर एकदम टेंशन नजर आने लगी और वो घबराते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। शिविका ने घबराते हुए कहा, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, आप उसका ख्याल रखिए, मैं बस अभी आती हूँ। उसे इस तरह एकदम से परेशान होते देख करण ने उसकी ओर देखा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर किसका कॉल होगा और उसने ऐसा क्या कहा शिविका से। क्रमशः